इंद्रप्रस्थ नगर में श्री कृष्ण, देवर्षि नारद मुनि तथा श्री कृष्ण के अन्य सभी साथियों की उपस्थिति में श्री उद्धव जी ने परिस्थिति को समझा तथा तत्पश्चात वे इस प्रकार कहने लगे। प्रिय भगवान, सर्वप्रथम मैं कहना चाहूँगा कि देवर्षि नारद मुनि ने आपसे निवेदन किया है कि आप भाई युधिष्ठिर के पास हस्तिनापुर जाकर उन्हें संतुष्ट करें, जो राजसूय यज्ञ को संपन्न करने के लिए प्रबंध करने में लगे हुए हैं। अतएव मेरा विचार है कि आप श्रीमान को इस भव्य कार्य में महाराज की सहायता हेतु वहां तत्काल ही जाना चाहिए। इसी के साथ, यद्यपि देवर्षि नारद मुनि के द्वारा प्रस्तुत किए गए निमंत्रण को मुख्य मानना उचित है, तथापि श्री भगवान, यह आपका कर्तव्य है कि आप उन समर्पित आत्माओं की रक्षा करें। यदि हम स्थिति को समझने का प्रयत्न करें तो दोनों लक्ष्यों को पूरा किया जा सकता है। जब तक हम सभी राजाओं पर विजय प्राप्त नहीं कर लेते, कोई भी इस राजसूय यज्ञ को संपन्न नहीं कर सकता। दूसरे शब्दों में यह समझना चाहिए कि युद्ध रथ जरासंध पर विजयी हुए बिना महाराज युधिष्ठिर इस महान यज्ञ को संपन्न नहीं कर सकते। राजसूय यज्ञ केवल उसी व्यक्ति के द्वारा किया जा सकता है जिसने प्रत्येक दिशा में विजय प्राप्त की हो। अतएव दोनों लक्ष्यों का पालन करने के हेतु हमें सर्वप्रथम जरासंध का वध करना होगा। मैं सोचता हूँ कि यदि हम किसी तरह जरासंध पर विजय प्राप्त कर ले तो हमारे सभी लक्ष्यों का हल मिल जाएगा। बंदी राजा मुक्त कर दिए जाएंगे और तब आपके द्वारा जरासंध के बंदी राजाओं की मुक्ति के दिव्य समाचार के प्रसारित होने पर हम भव्य सुख का आनंद उठाएंगे। किंतु राजा जरासंध कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, वह बड़े से बड़े वीरों के लिए भी बाधा सिद्ध हुआ है, क्योंकि उसकी शारीरिक शक्ति 10,000 हाथियों की शक्ति के समान है। यदि ऐसा कोई व्यक्ति है जो इस राजा को पराजित कर सके, तो वह भीमसेन के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं, क्योंकि वे भी 10,000 हाथियों की शक्ति धारण करते हैं। सर्वोत्तम यही होगा कि भीमसेन अकेले लड़े, तब फिर सैकड़ों सैनिकों का अनावश्यक वध नहीं होगा। वास्तव में जरासंध के द्वारा सैनिकों की औक्षहीणी सेना बनाकर खड़े होने पर उसे हराना अत्यंत कठिन हो जाएगा। अतएव हमें ऐसी नीति ग्रहण करनी होगी जो इस परिस्थिति के अनुकूल हो। हमें ज्ञात है कि राजा जरासंध ब्राह्मणों के प्रति समर्पित है, वह उनके प्रति बहुत ही परोपकारी है। वो ब्राह्मण के किसी भी निवेदन को इनकार नहीं करता। अतएव मेरा मत है कि भीमसेन को ब्राह्मण के वेश में जरासंध के पास जाकर भिक्षा मांगनी चाहिए और फिर व्यक्तिगत रूप से जरासंध के साथ युद्ध करने में लग जाना चाहिए। भीमसेन की विजय को निश्चित करने के लिए मेरे विचार से आपको उनके साथ जाना चाहिए। यदि आपकी उपस्थिति में ही युद्ध घटित होगा तो मुझे दृढ़ विश्वास है कि भीमसेन अवश्य ही विजयी होंगे, क्योंकि आपकी उपस्थिति मात्र से असंभव संभव हो जाता है। ठीक उस प्रकार जैसे ब्रह्मा जी इस ब्रह्मांड की सृष्टि करते हैं एवं आपके प्रभाव के द्वारा शिव जी उसका संहार कर देते हैं, वास्तव में आप संपूर्ण विराट जगत का निर्माण तथा विनाश करते हैं। ब्रह्मा जी एवं शिव जी सामान्य दृष्टिगोचर कारण हैं। निर्माण तथा विनाश वास्तव में अदृश्य काल चक्र के द्वारा संपन्न होता है, जो आपका निराकार प्रतिरूप है। सभी कुछ इस काल चक्र के नियंत्रण में है। यदि ब्रह्मा जी एवं शिव जी के द्वारा आपका कालचक्र इतने अद्भुत कार्य कर सकता है, तो क्या आपकी व्यक्तिगत उपस्थिति जरासंध को हराने के लिए भीमसेन की रक्षा नहीं करेगी? मेरे प्रिय भगवान, जब जरासंध का वध हो जाएगा, तब आपकी कृपा से सभी बंदी राजाओं की पत्नियां अपनी मुक्ति से इतनी प्रसन्न होंगी कि वे आपकी महिमा को गाना आरंभ कर देंगी। वे उसी प्रकार प्रसन्न होंगी जिस प्रकार शंखासुर के बंधन से मुक्त होकर गोपियां प्रसन्न हुई थी। सभी महर्षि गजराज गजेंद्र, भाग्य की देवी सीता तथा आपकी माता एवं पिता भी आपकी अहेतु की कृपा से मुक्त हो गए। हमारा भी उसी प्रकार उद्धार हो गया है और हम सदैव आपके कार्यों की महिमा का गान करते हैं। अतएव मेरा विचार है कि सर्वप्रथम यदि जरासंध के वध का कार्य कर लिया जाए, तो उससे अन्य सभी समस्याएं अपने आप सुलझ जाएंगी। जहां तक हस्तिनापुर में आयोजित राजसूय यज्ञ का प्रश्न है, वह या तो बंदी राजाओं के पुण्य कर्मों के द्वारा अथवा जरासंध के नास्तिक कर्मों के कारण संपन्न किया जाएगा। प्रभु, ऐसा प्रतीत होता है कि इस यज्ञ को पूरा करने के लिए आप व्यक्तिगत रूप से जाएंगे, जिससे जरासंध एवं शिशुपाल जैसे दानवों को हराया जा सके, धार्मिक बंदी राजाओं को मुक्त किया जा सके और साथ ही साथ महान राजसूय यज्ञ को संपन्न किया जा सके। इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए मेरा विचार है कि आप श्रीमान को तत्काल हस्तिनापुर जाना चाहिए। श्री उद्धव के इस परामर्श की सभा में उपस्थित सभी लोगों ने प्रशंसा की एवं सभी ने मान लिया कि सभी दृष्टिकोणों से श्री कृष्ण का हस्तिनापुर जाना लाभदायक रहेगा। देवर्षि नारद मुनि, यदुवंश के वयोवृद्ध व्यक्ति, स्वयं भगवान श्री कृष्ण, सबों ने श्री उद्धव के इस मत का समर्थन किया। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने अपने पिता वसुदेव एवं पितामह उग्रसेन से अनुमति ली और तत्काल ही हस्तिनापुर की यात्रा के लिए व्यवस्था करने के लिए अपने सेवकों दारुक एवं जैत्र को आज्ञा दी। जब सब कुछ व्यवस्थित हो गया, तब श्री कृष्ण ने विशेष रूप से श्री बलराम और यदुराज उग्रसेन से विदाई ली। तदंतर रानियों और उनके बच्चों को तथा उनके सामान को आगे भेजकर वे रथ पर सवार हुए, जिसमें गरुड़ के चिन्ह से अंकित एक झंडा था। शोभा यात्रा को आरंभ करने से पहले पूजा योग्य वस्तुओं को देवर्षि नारद के प्रति अर्पित करके उन्हें संतुष्ट किया गया। नारद जी श्री कृष्ण के चरण कमलों पर गिर जाना चाहते थे, किंतु क्योंकि श्री भगवान एक साधारण मनुष्य का अभिनय कर रहे थे, इसलिए नारद जी ने मन ही मन में अपनी वंदना अर्पित की तथा श्री भगवान के दिव्य स्वरूप को अपने हृदय में स्थित करके उन्होंने वायु मार्ग के द्वारा सभा भवन से प्रस्थान किया। सामान्य रूप से नारद जी पृथ्वी के धरातल पर कभी नहीं चलते, वरन बाह्य अंतरिक्ष में भ्रमण करते हैं। नारद जी के प्रस्थान के पश्चात श्री कृष्ण ने उस प्रतिनिधि को संबोधित किया जो बंदी राजाओं के पास से आया था तथा महाराज युधिष्ठिर उनका स्वागत करने ठीक उसी प्रकार गए जैसे इंद्रियों का मिलन जीवन की चेतना से होता है। महाराज युधिष्ठिर श्री कृष्ण के वयोवृद्ध भाई थे, स्वभावतः उन्हें श्री भगवान के प्रति गहरी अनुरक्ति थी तथा जैसे ही उन्होंने श्री कृष्ण को देखा तो उनका हृदय महान प्रेम तथा स्नेह से भर गया। उन्होंने भगवान को बहुत दिनों से नहीं देखा था, अतएव उन्होंने श्री कृष्ण को अपने सम्मुख देखकर स्वयं को अत्यंत सौभाग्यशाली माना। अतएव महाराज युधिष्ठिर स्नेह से उनका बार बार आलिंगन करने लगे।